Siddhevyah. Om Namah Siddhevyah. Om Namah Siddhevyah. Om Shrutatmane Namah. Namo Arihantaram. Namo Chittaram. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sauvasamunam. Sayalinda Vinda Vandiya Mahinandiya Bhauva Paumavana Sandam. Ahinandana Jinanaham. Namivunam Vakkamam Ocham. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित बहुला टीका है जो शतखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है। इसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। अब यह हमारे जो पुस्तक 15 नंबर की पुस्तक है उसमें जो शेष अनुयोग द्वार है उसकी चर्चा चल रही है। शेष अष्टादश अनुयोग द्वार लिखा है ना इसमें। देखो हम थोड़ा ये प्रस्तावना से देखते हैं इसकी। अभी तक हमने जो षटखंडागम में 6 अनुयोग द्वार देखे कि 24 अनुयोग द्वार इसमें है। देखो विषय परिचय निकालना, पहले से तीसरा पृष्ठ। विषय परिचय में देखो पहले लाइन से देखते हैं। अग्रायनी पूर्व के 14 अधिकारों में पांचवा चयन लब्धि नाम का अधिकार है, उसमें 20 प्रावृत है और उसमें चतुर्थ प्रावृत जो कर्म प्रकृति प्रावृत है उसमें 24 अधिकार है। कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन ये तो हमने पढ़े हैं सब। अब निबंधन प्रक्रम उपक्रम उदय मोक्ष संक्रम लेशा लेशा कर्म लेशा परिणाम साता सात दीर्घ रस्व भवधारणीय उद्गलात्त निधत्त अनिधत्त निकाचित अनिकाचित कर्मस्थिति पश्चिम स्कंद और अल्पगोत्व ये सभी 24 अधिकार हैं। अब देखो नीचे के पैराग्राफ में ये बीच में वो स्क्वायर का है ना, वहां लिखते हैं उसके आगे कि मूल षटखंडागम में पूर्वोक्त 24 अनुयोग द्वारों में से प्रथम 6 अनुयोग द्वारों के ही विषय का विवरण किया गया है। शेष निबंधन आदि 18 अनुयोग द्वारों की प्ररूपना यद्यपि मूल षटखंडागम में नहीं की गई है, फिर भी वर्गणा खंड के अंतिम सूत्र को देशामर्शक मानकर एक सूत्र में से ये उन्होंने निकाला है। उनकी प्ररूपना अपनी धवला टीका में वीर सेना आचार्य ने प्राप्त उपदेश के अनुसार संक्षेप में कर दी है। इसका नाम सत्कर्म प्रतीत होता है इसलिए इसको संत कम्म ऐसा लिखा है। अब इसमें से कौन कौन से, तो निबंधन हमने देखा था, निबंधन में द्रव्य जिसमें निबद्ध है उसको निबंधन कहा, उसके तो हमने डिटेल में उसको पढ़ा था। आगे के 4 पृष्ठ पर, 4 नंबर के पृष्ठ पर आठवां नंबर का जो अनुयोग द्वार है उसका नाम है प्रक्रम। प्रक्रम का अर्थ हमने देखा था कि कारमाण पुद्गल प्रचय, प्रचय ने संचय। तो वहां वो प्रकृति का स्थिति का अनुभव का प्रचय कैसे कैसे होता है, 3 प्रकार के प्रक्रम बताए, इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। 5 नंबर के पृष्ठ पर ये जो बीच में एक गाथा लिखी है ना उसके नीचे लिखा है, देखो प्रकृति प्रक्रम स्थिति प्रक्रम अनुभव प्रक्रम के भेद से प्रक्रम 3 प्रकार का बतलाया गया है।
हेलो
हेलो अभी आगे बढ़ते हाँ। तो वहाँ हमने देखे थे कि प्रक्रम तीन प्रकार का है, प्रकृति प्रक्रम, स्थिति प्रक्रम, अनुवाक प्रक्रम, उसकी भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। अब जो हमारा चल रहा है अनुयोग द्वार, उसका नाम है उपक्रम। तो उपक्रम के भी वहाँ छह भेद बताए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब ये कर्म उपक्रम की बात चल रही है, तो उसमें बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम, उपशामना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम, ऐसे चार भेद है। ये पांच नंबर के पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, विषय परिचय में पांचवा पृष्ठ चल रहा है। तो वहां लिखते हैं, देखो चौथी लाइन में, प्रक्रम और उपक्रम में विशेषता का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि प्रक्रम प्रकृति स्थिति प्रक्रम और उपक्रम में क्या विशेषता है? तो प्रक्रम में प्रकृति स्थिति और अनुभाग में आने वाले प्रदेशाग्रह की प्ररूपणा करता है, और उपक्रम है वो बंद होने के द्वितीय समय से लेकर सत्व स्वरूप से स्थित कर्म पुद्गलों के व्यापार की प्ररूपणा करता है। क्या कहना चाहते हैं? प्रक्रम में हमने क्या देखा था कि जिस समय बंद होता है उस समय प्रकृति स्थिति और अनुवाद की बात करते हैं, और उपक्रम में बंद होने के द्वितीय समय से लेकर जब तक सत्ता में पड़ा है तो उसकी बात उपक्रम में होगी। तो उपक्रम में अभी क्या क्या बताएंगे? बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम, उपशामना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम, यानी बंधने के द्वितीय समय से लेकर कर्मों में जो कोई बातें बनती है वो इस उपक्रम में बताएंगे। तो बंधन उपक्रम के तो अभी तक हमने जो कर्म की या हमने कितने सारे पुस्तकें पढ़ी है उसमें उसकी बात आई थी, इसलिए उसको शॉर्ट में उन्होंने बता दिया। यह मुख्यतः अभी उदीर्णा विषय परिचय के छह नंबर के पृष्ठ पर उदीर्णा की बात आती है। यह हमने पढ़ा था सब कुछ, फिर भी अभी थोड़े रिवीजन के लिए विषय परिचय में से लेते हैं। तो उदीर्णा कहना किसको? तो उदयावली के बाह्य में स्थित जो निषेक है उसमें से कर्म परमाणुओं का उदयावली में के आमिलना, उसको उदीर्णा है। उदयावली बाह्य स्थिति को आदि लेकर, स्थिति यानी निषेक, उदयावली के ऊपर का निषेक उसको स्थिति कहते, वो एक हो दो या अनेक हो, वहां से लेकर पहले से लेकर आगे की स्थितियों के, आगे के जो निषेक है उनके, बंधावली अतिक्रांत प्रदेश पिंड का, बंधावली अतिक्रांत का अर्थ होता है बंध के बाद जिसका एक आवली काल बीत गया है, ऐसे ही परमाणुओं की उदीर्णा या उदय हो सकता है। उदय तो होगा जब ही उसके आबादा काल पूरा हो जाएगा, परंतु उदीर्णा के द्वारा जल्दी उदय में आ सकते हैं आबादा काल के भी पहले, क्योंकि उदीर्णा की अपेक्षा भी आबादा काल हो सकता है, तो एक आवली काल के पश्चात ही उसकी उदीर्णा हो सकती है, उसको कहते हैं बंधावली। बंधने के बाद एक आवली काल तक कर्मों में कुछ उपशामना या उदीर्णा या कुछ नहीं होता है, उसको बंधावली कहते हैं। तो बंधावली अतिक्रांत यानी जिसकी बंधावली बीत चुकी है, ऐसे प्रदेश पिंड का, ऐसे कर्म परमाणुओं का उदयावली में देना, ये बीच वाला वाक्य हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे जो प्रदेश पिंड है जिनके बंध के बाद एक आवली बीत गई है, उनका उदयावली में देना उसे उदीर्णा कहते हैं। उन्हें तीसरी लाइन पहले पढ़ चुके हैं, अभी सेकंड लाइन में क्या कहते हैं, कितना देते हैं उसमें से, क्या पूरी स्थिति के प्रदेश देते हैं तो नहीं। तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रतिभाग से या असंख्यात लोग प्रतिभाग से अपकर्षण करके, यानी उदयावली में जो दिया जाता है वो अपकर्षण द्वारा दिया जाता है। अपकर्षण यानी ऊपर की स्थितियों में से कुछ प्रदेश पिंड या कुछ परमाणु नीचे के स्थितियों में आ मिलते हैं, उसको कहते हैं अपकर्षण। तो उसमें तो अपकर्षण भागहार जो अलग अलग हो सकता है, पल्ले का असंख्यात भाग या असंख्यात लोग। नहीं नहीं नहीं, पल्ले का असंख्यात भाग अलग है और असंख्यात लोग अलग है, क्योंकि तो क्या होता है कि पहले में पहले कितना अपकर्षण होता है, तो पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग का अपकर्षण होता है, उस एक भाग को फिर असंख्यात लोग से भाग देकर उदयावली में दिया जाता है और बाकी वो परिक्रम स्थिति में दिया जाता है। इसलिए दो भागार बताइए, यह ऑप्शन इसलिए है कि केवल अपकर्षण के लिए तो पल्ले का असंख्यात होगा, फिर उदीर्णा में भी होता है ना कि श्रेणी में जो है वहां भागार का प्रमाण बदलता है, या कहीं विशिष्ट पोजीशन में उसके अलग भागार होता है, इसलिए दोनों ही बताए अलग अलग।
मेरा ये प्रश्न है, पल्लव भाव का असंख्यात भाव बड़ा या असंख्यात लोग बड़ा,
कौन उत्तर देगा? इनका प्रश्न ऐसा है, पल्ले का असंख्यात भाग बड़ा कि असंख्यात लोग बड़ा? हाँ देवेंद्र भाई, आप कुछ मदद करा, असंख्यात लोग बड़ा क्यों? उत्तर भी देना पड़ेगा उसका। द्विरूप वर्गधारा याद है, जितने असंख्यात वे स्थान पर पल्ले है, मान लेते हमें 100 स्थान पर है, तो अंगुल कौन से स्थान पर है? 200 और 100 आगे, पल्ले के आगे 200, यानी उतने ही स्थान जाकर अंगुल होता है। अंगुल से कितना छोटा है और लोग कितना बड़ा है, और असंख्यात लोग और कितना बड़ा होगा क्या लेना? लोग तो बहुत बड़ा माप है, वो तो घनधारा में आता है।
भी असंख्यात और छोटा होगा,
बहुत छोटा होगा,
उसका तो बहुत 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 बड़ा होगा।
तो ये विशिष्ट जो भागहार है वो अलग अलग जगह अलग अलग उदीर्णा का प्रमाण चेंज हो सकता है, श्रेणी में भी या अन्य ठिकाने, तो इसीलिए उसके दो अलग अलग भागहार बताए। यथा योग्य जो जहाँ होगा, या तो समराइजेशन है ना, पूरे शॉर्ट में बता रहे, बाकी आगे जो विस्तार से चर्चा आगे आएगी। देखो
तो ये श्रेणी पल्ले का समराइज नहीं हो और ये बड़ा, मतलब उसके भी वेरियस कोई भी
पॉसिबल, कोई भी नहीं, ये दो ही भागार होते हैं,
भागार तो दो ही।
हाँ
लेकिन परमाणु की स्थिति में जो वेरियस क्वांटिटी में वो हो सकता है, ऐसा
नहीं, नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। उसकी जो जितनी टोटल क्वांटिटी है उसको इस भागार से भाग देते हैं, इसको अपकर्षण भागार कहते हैं। परंतु श्रेणी में जहाँ अधिक अपकर्षण होता है तो वहाँ उसके भागार बदलते हैं, क्योंकि अपकर्षण तो टोटल अपकर्षण हुआ, अपकर्षण जितना हुआ उसमें से पूरे के पूरा उदयावली में नहीं दिया जाता, तो फिर अपकर्षण जितने का हुआ उसमें से उदयावली में कितना दिया जाता है, इसके लिए उसमें और एक भागार जोड़ दिया। तीसरी लाइन, अभिप्राय यह है कि उदयावली को छोड़कर आगे की स्थितियों में से, यानी आगे के निषेकों को, उदयावली के ऊपर के निषेकों में से प्रदेश पिंड को खींचकर, यानी परमाणुओं को उदयावली में प्रक्षिप्त करने को उदीर्णा कहते हैं। ये कोई खींचता नहीं कुछ नहीं, भाषा ऐसी होती है, वह दो प्रकार की है, एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। एक एक प्रकृति उदीर्णा यानी कौन से प्रकृति की उदीर्णा है उसको एक एक प्रकृति उदीर्णा कहेंगे। प्रकृति स्थान उदीर्णा यानी कितने प्रकृतियों की उदीर्णा होती है एट ए टाइम, उसके स्थान कितने का है, 6 का स्थान है कि 8 का स्थान है उसकी, प्रकृति स्थान उदीर्णा कहेंगे। एक एक प्रकृति उदीर्णा की प्ररूपना में प्रथमतः उसके स्वामियों का विवेचन किया गया है, यानी ज्ञानावरण के उदीर्णा वाला कौन सा जीव है, तो कौन से गुणस्थान तक, कौन से गुणस्थान कहां से कहां तक, वो बात करेंगे। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों की उदीर्णा के स्वामी का निर्देश करते हुए बतलाया है, इन कर्मों की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक होती है, जहां उदय है वही उदीर्णा हो सकती है। क्यों? क्योंकि उदीर्णा की डेफिनेशन ही है कि उदयावली के बाहर के निषेकों को, उसमें से कुछ परमाणुओं को उदयावली में देना, तो जिसका उदय नहीं है उसकी उदीर्णा नहीं होगी। तो यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का उदय कहाँ तक है, याद है ना, बारहवें गुणस्थान, तो उसकी उदीर्णा भी बारहवें तक होगी। तो क्या अंतिम समय तक उदीर्णा होगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि उदयावली को छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक उदयावली प्लस एक निषेक बाकी है तब तक ही उसकी उदीर्णा हो सकेगी। तो कहते हैं इन कर्मों की उदीर्णा विशेषता क्या है, क्षीण कषाय के काल में एक समय अधिक आवली मात्र शेष रहने पर उनकी उदीर्णा विच्छिन्न हो जाती है, यानी वह उसका अंतिम निषेक है जिसमें से उदीर्णा होगी, आवली प्लस एक समय वाले, जब उदीर्णा की विच्छित्ति होती है, क्योंकि अभी उदय काल इतना ही बाकी रह गया, एक उदय आवली इतनी बाकी रहेगी, अंतिम आवली है, वह उदय वाली अंतिम आवली है, आवली काल में बारहवां गुणस्थान पूरा होने वाला है, इसलिए अभी उदीर्णा के लिए कोई अधिक निषेक ही नहीं है वहां। तत्पश्चात एक एक प्रकृति उदीर्णा विषय एक जीव की अपेक्षा काल और अंतर, यानी कितने काल तक होगा, उसमें अंतर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, तथा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय, अलग अलग कौन कौन से भंग हो सकते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा काल और अल्पभूतत्व का उसकी प्ररूपना की गई है। नाना जीवों की अपेक्षा उसके अंतर की संभावना ही नहीं है, यानी हमेशा नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जीव उनकी तो उदीर्णा करता ही रहेगा, अंतर हो ही नहीं सकता। एक एक प्रकृति का अधिकार होने से यहाँ भुजाकार पदनिक्षेप और वृद्धि उदीर्णा की भी संभावना नहीं है। एक एक प्रकृति की बात करते हैं, अनेक प्रकृतियों की एक साथ बात करेंगे कि यहाँ छह की उदीर्णा होती है, फिर वहां से छह में से अगर कम की उदीर्णा होने लगी, या कम होती थी और अधिक की उदीर्णा होने लगी, जैसे ग्यारहवें गुणस्थान में जाके फिर नीचे आए और फिर उदीर्णा अधिक की होने लगी, तो कह सकते हैं कि वहां भुजाकार यानी कम था और अधिक हुआ, तो भुजाकार की वहां बात नहीं हो सकती। अब प्रकृति स्थान उदीर्णा की बात करेंगे। प्रकृति स्थान उदीर्णा की प्ररूपना में स्थान समुत्कीर्तना करते हुए स्थानों का व्याख्यान करते हुए, समुत्कीर्तना करना यानी उसका विवेचन करना, व्याख्यान करना यानी उसके स्थान बताते हुए, मूल प्रकृतियों के आधार से ये पांच प्रकृति स्थान बतलाए गए हैं, अलग अलग स्थानों की, मैंने कितने का एक स्थान है तो पांच अलग अलग प्रकृति स्थान बताए, कैसे, आठों प्रकृतियों की उदीर्णा रूप पहला, ये पहला स्थान, उसमें आठों ही कर्मों की उदीर्णा होती है। आयु के बिना शेष सात प्रकृतियों रूप दूसरा, ये पहला के बाद कॉमा लगाना चाहिए, यानी जहां आयु की उदीर्णा नहीं हो रही है और सात प्रकृतियों की उदीर्णा होती है, ऐसा कब संभव है आयु की उदीर्णा नहीं हो रही? आखिरी एक आवली काल छोड़कर, मरण के एक आवली पहले आयु की उदीर्णा रुक जाती है, हमें वो कदली घात वाली उदीर्णा उसकी बात नहीं यहाँ पर, हर समय जब आयु का उदय शुरू होता है उसकी उदीर्णा चालू ही होती है, मरण के एक आवली पहले उसकी उदीर्णा रुक जाती है, तो वहां सात कर्मों की उदीर्णा होगी, इसलिए सात कर्मों की उदय उदीर्णा रूप दूसरा स्थान। आयु और वेदनी के बिना शेष छह प्रकृतियों रूप तीसरा, वेदनी की उदीर्णा कहाँ तक है याद है ना, ये अभी क्या है, हम गए ना अमरीका, उसके पहले हुआ था ये, हाँ बराबर है, छठे तक होती है, तो सातवें में नहीं होगी उद्दीपना, तो वहां छह प्रकृतियों की उद्दीपना वो तीसरा स्थान, मोहिनी आयु और वेदनी के बिना शेष प्रकृतियों रूप चौथा स्थान, मोहिनी की उद्दीपना भी दसवें के अंत में रुक जाएगी, तो उसके बाद तो ये चार प्रकृति तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयु और अंतराय के बिना शेष दो प्रकृतियों रूप पांचवा, शेष दो कौन से रहेगी, गोत्र नाम, क्योंकि आयु के तो अंत में ही रुकती है, और फिर ये जो यहाँ जो नाम गोत्र की बात है नहीं नहीं नहीं, आयु आयु की उदीर्णा भी, आयु की उदीर्णा भी रुक जाती है, वो भी मरण के पहले तो होती होती है, और छठे में भी है ना उसकी, ये स्वामी तो हम बताएंगे अभी आगे की पैराग्राफ में आती है। तो स्वामित्व प्ररूपणा, उसका स्वामी कौन है, किसके होती है, ये बताते समय उसका निर्देश करते हुए बतलाया, इनमें से प्रथम स्थान जिसका आयु कर्म उदयावली में प्रविष्ट नहीं है, ऐसे प्रमत्त जीव के होता है, यानी मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक प्रमाद युक्त जीव के होता है, द्वितीय स्थान भी उक्त जीव के ही होता है, विशेषता केवल इतनी है कि उसका आयु कर्म उदयावली में प्रविष्ट होना चाहिए। दूसरा स्थान कौन सा है, सात कर्मों का, जब आयु कर्म उदयावली में प्रविष्ट होना यानी मरण का एक आवली बाकी रहना, हाँ। तीसरा स्थान आयु और वेदनी के बिना बताया, तीसरा स्थान छह प्रकृतियों रूप सातवें गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक होता है, देखो आयु की भी उदीर्णा छठे तक ही, आगे नहीं उदीर्णा नहीं आगे, और वेदनीय की भी छठे तक ही है, तो यहाँ दूसरा स्थान कैसे लिया, देखो पहले आठों कर्मों की उदीर्णा होती है, दूसरा स्थान ऐसा लगे कि छठे गुणस्थान के नीचे वाला ही जीव है, परंतु अभी आयु उसमें उदयावली में प्रवेश कर गई है, यानी अभी एक आवली काल बाकी है, तो आयु की उदीर्णा रुक गई और सात कर्मों की उदीर्णा हो रही है, आयु बिना सात, अब सातवें गुणस्थान में गया हो तो वहां आयु की उदीर्णा नहीं होती और वेदनी की भी नहीं होती, तो छह का स्थान हो जाएगा, ये तीसरा स्थान सातवें गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक होता है। चौथे स्थान का स्वामी, चौथा स्थान किसको बताया था, मोहनीय भी नहीं है, आयु और आयुर्वेदनीय तो रुक गया साक्ष में, और अभी मोहनीय भी रुक जाएगा, तो उसका स्वामी कौन है, छद्मस्थ वितराग जीव होता है, यानी उपशांत कषाय और क्षीण मोह, विशेष इतना है कि वह क्षीण मोह के काल में आवली मात्र काल शेष रह जाने के पहले पहले होता है, यानी एक आवली बाकी रहे तो और भी ज्ञानवरण आदि को भी उदीर्णा रुक जाएगी, तो उसके पहले पहले ये चौथा स्थान होता है, उसके पश्चात नहीं, और पांचवा जो स्थान का स्वामी है, नाम और गोत्र प्रकृतियों की उदीर्णा वाला, वो चरम आवली कालवर्ती क्षीण मोह कषाय तथा संयोग केवली है, ये कौन है, चरम आवली कालवर्ती है, क्षीण कषाय का लास्ट आवली तथा संयोग केवली, अयोगी को क्यों नहीं लिया, वहां तो उदय चल रहे हैं ना नाम और गोत्र, हाँ उदीर्णा की विच्छुक्ति तेरवे में हो जाती है, नाम और गोत्र की भी उदीर्णा संयोग केवली के अंत समय तक है, आगे नहीं, अब ये विषय उन्होंने बताया था स्वामित्व का। तत्पश्चात प्रकृति स्थान उदीर्णा की ही प्ररूपणा में एक जीव की अपेक्षा काल और अंतर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, नाना जीवों की अपेक्षा काल व अंतर तथा अल्प बहुत्व का विचार किया है। अपना ये कहाँ तक आया था? अल्पतर वगैरह हम 103 पृष्ठ पर आए थे। स्थिति उदीर्ण वगैरह बात चल रही थी ना, प्रकृति उदीर्ण की बात हुई थी अपनी। अब इसमें तो हमने ये सारे भंग वगैरह सब देखे थे। अब 10 नंबर जो है विशेष ये चीज का ना, 10 नंबर के पेज पर विषय परिचय में 10 नंबर का पर इन्हें प्रकृति उदीर्णा में और भी जो अलग भंग पड़ते हैं, पूजा कारण अधिक प्रकृतियों की उदीर्णा, कभी कम प्रकृतियों या उतनी रहना, उसकी विस्तार से बात की थी। 10 नंबर के पृष्ठ पर स्थिति उदीर्णा बता रही है। तो स्थिति उदीर्णा देखो, यह भी मूल प्रकृति स्थिति उदीर्णा, स्थिति यानी निषेध, और उत्तर प्रकृति स्थिति उदीर्णा के भेद से दो प्रकार की है। मूल प्रकृति स्थिति उदीर्णा में मूल प्रकृतियों के आश्रय से स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा 2 आवलियों से कम 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपों में। ये 2 आवली क्यों कम किए होंगे? हाँ बहुत अच्छा, एक तो बंधावली तक उदीर्ण नहीं हो सकती, और उदीर्ण उदयावली के बाद वाले की होती है, तो वो भी एक आवली छोड़नी पड़ेगी। इसे बंधावली और उदयावली मिलकर 2 आवली छोड़कर 30 कोड़ा कोड़ी सागरों तक के या उसके ऊपर के जो उदीर्ण होकर उदयावली में आ जाना, उसको कहेंगे उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण। आगे लिखा है, यहाँ उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण में 2 आवली कम बतलाने का कारण यह है कि बंधावली और उदयावली गत स्थिति स्थिति यानी निषेक उदीर्णा के अयोग्य होती है। अब जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होगी? तो जघन्य में जघन्य कितने स्थिति की उदीर्णा होगी? तो उदयावली के बाहर का एक निषेक। तो जघन्य स्थिति उदीर्णा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की एक स्थिति मात्र है, यानी एक ही स्थिति की उदीर्णा। अभी तक कैसे बंधावली उदयावली छोड़कर वो एक से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी तक जितने सारे होते उन सब की उदीर्णा होती, अब एक ही उदीर्णा होगी, जो कि ऐसे क्षीण कषाय जीव के पाए जाते हैं जिससे अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय होने में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है। ज्ञानावरण की बात चल रही है तो ज्ञानावरण का उदय 12वां है ना, 12वें के अंत समय तक है, तो एक उदयावली को छोड़कर जो उसके ऊपर की एक स्थिति है, निषेक है, उसकी उदीर्णा होगी, उसको यहां बताएं, उसको जघन्य स्थिति उदीर्णा कहते हैं। मोहनी की जघन्य स्थिति उदीर्णा भी एक स्थिति मात्र है। ये मोहनी का अंतिम उदय कहां तक होता है? 10वें के अंत में, तो उसकी भी जघन्य उदीर्णा कहां पाई जाएगी? हाँ, 10वें में एक आवली छोड़कर, एक आवली और एक समय, जो कि ऐसे सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के पाई जाती है जिसके अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होने में एक समय अधिक आवली मात्र स्थिति शेष रही है। शपक की बात की, क्यों? उपशांत भले हो, उपशांत क्या होता है? उपशम किसका होता है? मोहनी का होता है, चारित्र मोहनी का होता है। ज्ञानावरण का तो उदय चल रहा है 11वें में भी, और ऊपर नीचे आएगा 10वें तो भी, यानी वहाँ उदय में कोई खंड ही नहीं है। यहाँ अभी उदय मिटने वाला है। ये तो हो गई उन्होंने ज्ञानावरण मोहनी की बताई। वेदनीय के जघन्य स्थिति उदीर्णा पल्लोपम के असंख्यात वे भाग से हीन 3/7 सागरोपम प्रमाण है। ये किसके पाई जाती है?
एक
इंद्रिय में। जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थिति उदीरणा में मूल प्रकृतियों के आश्रय से यह प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार उत्तर प्रकृति स्थिति उदीरणा में उत्तर प्रकृतियों के आश्रय से उक्त प्ररूपणा की गई है। ये विस्तार से वहां फिर बताएंगे। ये अभी हम यहाँ देख रहे थे उत्तर प्रकृतियों की उदीरणा। देखो थोड़ी हम एक 100 नंबर का पेज निकालना, क्योंकि 103 पर आए थे हम, उसके पहले वहां से ही अभी पढ़ेंगे। ये जो उत्तर प्रकृतियों के आश्रय के बात है ना, वो यहाँ चल रही है। अब रेगुलर 100 नंबर का पृष्ठ निकालेंगे, नीचे से चौथी लाइन। स्थिति उदीरणा दो प्रकार की है, यहाँ से स्थिति उदीरणा का विषय चलता है। मूल प्रकृति स्थिति उदीरणा, उत्तर प्रकृति स्थिति उदीरणा। मूल प्रकृति स्थिति उदीरणा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट, जो अभी हमने विषय परिचय में पढ़ा था उसी की बात है। उनमें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय और अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा दो आवलियों से ही 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है, वो तो बंधावली और उदयावली को छोड़कर। इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्म की भी स्थिति उदीरणा समझना चाहिए। विशेषता यह है कि उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, उसमें से दो आवली कम करेंगे 20 कोड़ाकोड़ी सागर। उनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा दो आवलियों से ही 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। मौनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा दो आवलियों से ही 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा एक आवली से रहित 33 सागरोपम है। आयु अधिक से अधिक 33 सागर की होती है तो उसमें उत्कृष्ट दो एक, उसका तो उदय कब से शुरू होता है, वहां से उसकी उदीरणा भी शुरू होती है। बद्यमान आयु का पहला से भुज्यमान आयु बद्यमान भुज्यमान आयु के पहले समय से शुरू हो गई और अंतिम आवली उसको छोड़ने की। तो यहाँ दो आवली नहीं लिखा, तो उसके बंधावली का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उसके जब जब आयु का भोगना शुरू हो जाता है, आयु का उदय शुरू हो जाता है, बंध तो पूर्व भाव में हो जाता है और अभी नेक्स्ट भाव में उसका उदय शुरू होते ही उदीरणा चालू होती है। कब तक होगी? मरण के एक आवली पहले तक। इसलिए आयु कर्म में उदीरणा कितने काल तक होती है, जितनी आयु बंधी उसमें से एक आवली कम हो, तो अधिक से अधिक आयु है 33 सागर की, तो उसमें से एक आवली कम, ये उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा समाप्त हो गई। अब जघन्य स्थिति उदीरणा, अभी हमने पढ़ा था विषय परिचय में, वही बात यहाँ फिर दोहराएंगे। देखो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय की जघन्य स्थिति उदीरणा एक स्थिति मात्र है। ये कौन सी स्थिति होगी? उदयावली के ऊपर की। वह किसके होती है? वह जिसके अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय होने में एक समय अधिक आवली मात्र शेष रही है उसके होती है। मोहनी की जघन्य स्थिति उदीरणा एक स्थिति मात्र है, वह किसके होती है? वह जिस जीव के अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक होने में एक समय अधिक आवली मात्र काल शेष रहा है उसके होती है। और वेदनीय की जघन्य स्थिति उदीरणा पल्लोकों के असंख्यात भाग से ही सागरोपम के 3/7 भाग प्रमाण होती है। नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति उदीरणा उसमें भी एक इंद्रिय में भी जो उत्कृष्ट है वो 3/7 सागर है उत्कृष्ट। और जघन्य जघन्य लेना है ना, और जघन्य स्थिति उदीरणा हाँ उसमें से कम करना असंग। उसमें से पल्ले का माइनस कर दो, जगन्यासी की उतनी होती है। यानी वेदनी में कभी ऐसा आवली कम इतना होगा ही नहीं, यानी एक स्थिति वाली कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेदनी की उदीरणा की विच्छिति छठे में होती है। अभी छठे गुण स्थान में वेदनी की कितनी सत्ता पड़ी है, पूरे पूरे अंत कोड़ा कोड़ी सागर में, तो हो ही नहीं सकते तब। तो एक इंद्रिय में उसकी स्थिति कम है, तो एक इंद्रिय में कम है, परंतु एक इंद्रिय में भी सूक्ष्म एक इंद्रिय में और कम होती है, तो जगन्य कितनी होती है उसमें, तो उसमें से पल्ले का संख्या पर कम। नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा एक समय कम आवली से ही अंतर्मुहूर्त मात्र होती है। अभिप्राय यह है वह अयोग केवली के काल और अंतिम फाली रूप होती है, यानी अयोग केवली का पूरा काल और संयोग केवली के अंतिम समय में वो तो अंतिम फाली जो है उस रूप वो होती है, यानी वो अंतिम फाली वाली जो उदीर्णा हुई वही उसकी अंत की उदीर्णा है, उसके बाद उदीर्णा रुक जाती है। नहीं, इसीलिए ऊपर अंतर्मुहूर्त लिखा है ना, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति उदीर्णा एक समय कम आवली से हीन अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त से इतना कम कर दिया उन्होंने।
13वें में से एक समय कम और 14वां पूरा उसमें उदीर्णा नहीं।
देखिए
अंतिम फाली का जो समय है वो भी देखिए,
और एक समय कम और अंतर्मुहूर्त पूरा
है। ये जो उदीर्णा होगी तो उदीर्णा किसको कहेंगे, उदयावली में देते हैं उसको कहेंगे। तो अभी 14वें में उदय चल रहा है, तो तभी उसमें उसका जो अंतिम समय है, उदय का अंतिम समय, तब तक तो उदीर्णा होगी। बाद में भले सत्ता में अंतर्मुहूर्त काल शेष रहा है, उसकी उदीर्णा नहीं होगी, इसलिए उसको
लिए। वो जो उदीर्णा नहीं होने का जो काल है,
हाँ,
तो संयोग केवली का लास्ट आखिरी एक समय और जो अंतर्मुहूर्त है
14 का पूरा अंतर्मुहूर्त
लिया, वो नहीं होगी।
अभिप्राय यह है कि वह अयोग केवली के काल, पूरा अयोग केवली का काल और अंतिम फाली रूप होती है। अंतिम फाली में वो जो उदीर्णा हुई वो हुई, अब आगे नहीं होगी, आगे केवल उदय होगा या अपकर्षण वगैरह सब रुक जाएगा, उदीर्णा रुक जाएगी। आयु कर्म की जघन्य स्थिति उदीर्णा एक स्थिति मात्र है, वह कहां पर होती है? मरण समय में एक समय अधिक आवली के शेष रहने पर होती है। ये समझ में आया ना, क्योंकि आवली शेष रहा तब उदीर्णा रुक जाती है, उसके एक समय पूर्व तक उदीर्णा थी, इसलिए एक समय अधिक आवली कहा। इस प्रकार मूल प्रकृति स्थिति उदीर्णा समाप्त हुई। ये तो समझना आसान है। अब ये उत्तर प्रकृति की जो उदीर्णा हम पढ़ रहे थे फिर से पढ़ेंगे। वैसे तो 17 नंबर के लेक्चर में हमने दो ही पेज पढ़े थे। देखो उत्तर प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरणीय, 9 दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय और 5 अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा। यहाँ असाता का क्यों लिया? 30 कोड़ा कोड़ी वाले लेने हैं ना, इसलिए उसको लिया। तो साता की कितनी होती है? तो इनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा 2 आवलियों से कम, 2 आवली में एक बंधावली और एक उदयावली ली, 2 आवलियों से कम 30 कोड़ा कोड़ी सागरों में। साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा 3 आवलियों से हीन 30 कोड़ा कोड़ी सागरों में। ये 30 कोड़ा कोड़ी इसको भी बताया, परंतु 3 आवली से कम, इसको हमने 105 नंबर पर पढ़कर देखा था। अभी उसको फिर पढ़ेंगे थोड़ी देर में।
30 क्यों लिया?
30 क्यों लिया? क्योंकि वो पहले संक्रमित हो जाती है, संक्रमित होकर सातावेदी नहीं रूप, परंतु उसमें स्थिति पड़ी है ना इतनी, इसलिए उसके बाद हम 105 पेज पर पढ़ेंगे। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण, दो अवलियों से हीन 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व यानी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण, अंतर्मुहूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण। तो इसकी 70 कोड़ाकोड़ी कैसे हुई स्थिति? देखो, जब तीन भाग होते हैं तो उसकी स्थिति कितनी हो जाती है? अंत कोड़ाकोड़ी की होती है, क्योंकि अंत कोड़ाकोड़ी पहले होता है मिथ्यात्व और बाद में उसमें संक्रमित होता है, परंतु जब मिथ्यात्व बांधा था तो 70 कोड़ाकोड़ी का था, तो उसमें वो 70 कोड़ाकोड़ी वाले स्थिति वाला पड़े है उसमें, तो उसकी अपेक्षा यहाँ इसको भी सब मिथ्यात्व 70 कोड़ाकोड़ी का बांधा था, और जब वो सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता हुई तो उसको अंत कोड़ाकोड़ी बनाया, और बाद में उसके तीन टुकड़े हुए हैं, क्योंकि एज इट इज डायरेक्ट कोई भी सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी हो ही नहीं सकती है, उस अपेक्षा से यहाँ उसको 70 कोड़ाकोड़ी में से कम किया। तो अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, अंतर्मूर्त क्यों कम? ये बंधने के बाद उसमें जो कुछ अंतर्मूर्त में उसकी स्थिति घट गई, अंत कोड़ाकोड़ी कर दी उसकी, फिर संक्रमित हो गई ना वो मिथ्यात्व में से, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तैयार हुई।
तो
जब भी बांधा था तो मिथ्या तो प्रकृति रूप बांधा था,
कभी तो कभी जो सम्य प्रकृति बनती है, कभी तो अंत कोड़ाकोड़ी
सम्य प्रकृति बनती नहीं है,
बनती नहीं है।
हाँ।
जब भी जो
मिथ्या तो में से तैयार
होती है, अंत
जब मिथ्या तो में से तैयार हुई तब मिथ्यात्व की कर्म स्थिति घटकर अंत कोड़ाकोड़ी हुई थी, तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व भी अंत कोड़ाकोड़ी का हुआ, बराबर है ना? तो उसके पूर्व की अपेक्षा से उसको 70 कोड़ाकोड़ी वाला।
क्या
क्या क्या फिर कसाई बोर्ड मिल गया इससे डायरेक्ट उसको होता है समय प्रवृत्ति
हमने देखा था ना 70 कोड़ाकोड़ी वाला जो पूर्व दशा है
105 में
वो ये हो गए ही नहीं, उसको समय तो हो गए ही नहीं, मतलब वो
ऐसा नहीं है, ऐसा असर होते स्थिति बांधे ना
त्यांची योग्यता आहे ते ग्रहण होऊन ते 70 पर्यंत पोहोचले। 105 पृष्ठ निकालना नीचे से तिसरी लाईन चौथी लाईन, सम्यक्त्व प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? यह स्वामित्व की बात है ना, जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट की स्थिति को बांध कर अंतर्मूर्त में प्रतिभग्न होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है। हमने तो वही तो बताया ना, तो पहले 70 कोड़ाकोड़ी के बांधी थी और फिर बाद में समय को प्राप्त करता है तो उसके अंत कोड़ाकोड़ी हो जाती है, परंतु उसमें वो 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति पड़ी है ना, तो उस अपेक्षा से उसको कहते हैं। उसके समय दृष्टि होने के द्वितीय समय में सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा होती है, वही समय दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गया तो उसके सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण होती है, क्योंकि यही रूल हमने सातावेदिनी के बारे में बताया। देखो ऊपर उसी पैराग्राफ के उत्तर 105 नंबर पर सातावेदिनी की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो असातावेदिनी की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर 30 कोड़ाकोड़ी बांधी, प्रतिभग्न होकर साता वेदनी की बांधता हुआ एक आवली से हीन असाता की उत्कृष्ट स्थिति को साता रूप संक्रांत कर। असाता के बंद के समय में तो साता रूप संक्रमित नहीं होगी, क्योंकि परिणाम ऐसे ना असाता के बंद वाले, तो जब साता का बंद कर रहा था तो भी पहले बांधी हुई असाता वो साता रूप संक्रमित हुई। पहले स्थिति कितनी बांधी थी उसकी 30 कोड़ा पर, अभी वो साता रूप संक्रमित हुई तो ये संक्रमणावली हो जाएगी उसकी। एक आवली में संक्रमण हुआ है ना, बंदावली संक्रमणावली और उदयावली तीन हो जाएगी। और संक्रमणावली काल को बिताकर उदयावली के बाहर की सब स्थितियों का अपकर्षण करके उदय में देता है वह साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। यानी उतनी स्थितियों में से अपकर्षण एक साथ होता है सभी निषेकों में से, उसकी बात है। ऐसे ही यहाँ समझना
है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट को पहले प्राप्त किया है तीन टुकड़े किए हैं, पीछे एक अंतर्भूत वो मिथ्या को ले जाता है, उत्कृष्ट स्थिति लाता है और वापस वो सब्जेक्ट को प्राप्त करता है, तभी ये होगा। तो उसके पहले तो नहीं,
पहले भी डायरेक्ट होता है। मिथ्या तो मैं था, मिथ्या तो मैं 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहा था और फिर एक अंतर्मूर्त ने सम्यक तो प्राप्त कर,
तो वहाँ तो अंतर कोड़ाकोड़ी हो
गया। पर उसकी वो 70 कोड़ाकोड़ी की गिनेंगे ना, जो बांधी थी तब 70 उसी को लिया। असाता को भी वैसे लिया हमने, साता को 30 कोड़ाकोड़ी उसी प्रकार से लिया है। पहले असाता थी वो साता रूप हुई, पर उसकी स्थिति कितनी है 30 कोड़ाकोड़ी। वैसे ये जो मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी, वो परमाणु में स्थिति जो है वो उतनी शक्ति रूप पड़ी है ना वहाँ पर, उसको
अभी
आप 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण मिला ना। अभी 102 पेज पर आ गए, फिर वापस दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। 16 कषाय, ये 16 कषाय भी याद है ना। हाँ, अनंतानुबंधी चार, वो प्रत्येकम प्रत्येकम संयुला। ये 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण दो आवलियों से ही 40 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है, क्योंकि उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंद 40 कोड़ाकोड़ी सागर का, तो दो आवली कम की, एक बंदावली और एक उदयावली। 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण तीन आवलियों से हीन 40 कोड़ाकोड़ी सागरूपम प्रमाण है। यहां भी वो ट्रांसफर होके होती है इसलिए तीन आवली ले, क्योंकि नौ कषायों की स्थिति इतनी लंबी नहीं है, तो कषाय है वो नौ कषाय रूप होकर फिर उसकी उदीर्ण होगी, इसलिए इसको दिया। नारक आयु और देवायु की, देवा वो है देवायु करना, देवायु की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण एक आवलिकम 33 सागरोपम प्रमाण है। तिर्यक आयु और मनुष्यायु की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण एक आवलिकम 3 पल्लोपम प्रमाण है। ये आवली कौन सी लेना, उदयावली, बंदावली नहीं लेना यहाँ पर। आयु में अंतिम आवली लेना, मरण के पहले वाली आवली। नरक गति, तिर्यक गति, एकेंद्रिय व पंचेंद्रिय जाति, औदारिक वैक्रियक तेजस व कारमान शरीर, कुंडक संस्थान, औदारिक व वैक्रियक शरीर अंगोपान, असंप्राप्त सुपाटिका सहन, वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गति, तिर्यक गति, प्रायज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योग, अप्रशस्त विहार गति, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेव, अयश कीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र, इनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण दो आवलियों से हीन 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। जिसका जिसका स्थिति बंद जितना है उसमें से दो अवधि कम कर। मनुष्य गति 5 संस्थान, 5 सहनन, प्रशस्त विहार गति, स्थिर आदि 6, उच्च गोत्र, इनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा तीन आवलियों से ही 20 कोड़ाकोड़ी सागरूपम प्रमाण है। अभी इनमें से जो है ना, तो तीन आवली लिखा यानी वो संक्रमित होकर उस अपेक्षा से उसकी लेना सकती। देवगति द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, देवगति मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी आतप सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर, इनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अंतर्मूर्तकम 20 कोड़ाकोड़ी सागरूपम प्रमाण है। यहाँ आवलिकम ने तीन आवली नहीं लिया, अंतर्मूर्त लिया। आहार द्विक की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अंत कोड़ाकोड़ी सागरूपम प्रमाण है। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा पल्लेकम के असंख्यातवे भाग मात्र है। इस प्रकार उत्कृष्ट अधा छेद समाप्त हुआ। जघन्य अधा छेद प्रकृति है, ये उत्कृष्ट जो बात है प्रकृतियों की, उत्तर प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थिति। अभी जघन्य स्थिति उदीर्णा की बात, प्रकृत है ना प्रस्तुत है, अभी वो बताएंगे। पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व सम्यक्त्व, तीन वेद, चार संज्वलन, चार आयु और पांच अंतराय, इनकी जघन्य स्थिति उदीर्णा एक स्थिति मात्र है। सम्यक प्रकृति में, सम्यक है ना सम्यक प्रकृति। स्त्यान वृद्धि आदि तीन, सातावा असाता वेदनीय, बारह कषाय, छह नौ कषाय, एकेन्द्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, पांच सहनन, तिर्य गति, तिर्य गति व मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी, आतप उद्योग, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति और निज गोत्र, इनकी जघन्य स्थिति उदीर्णा पल्लोकम के असंख्यात वे भाग से हीन एक सागरोपम के सात भागों में से तीन चार और दो भाग प्रमाण है। यानी तीन सप्तमांश, चार सप्तमांश और दो सप्तमांश। तीन सप्तमांश ज्ञानावरण है, दर्शनावरण आदि उसके लिए, यानी स्थान बुद्धि वगैरह के लिए लिए। अर्थात तो आगे बता देते, हाँ, अर्थात दर्शनावरण व वेदनीय प्रकृतियों की पल्लोकों का असंख्यात भाग कम एक सागर के तीन बटे सात भाग प्रमाण, मोहनीय की उत्तर प्रकृतियों की पल्लोकों का असंख्यात भाग कम एक सागर के चार बटे सात भाग प्रमाण, तथा नाम और गोत्र कर्म की उत्तर प्रकृतियों की पल्ल के असंख्यात भाग कम एक सागर के दो बटे सात भाग प्रमाण जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। अभी हमने जब प्रकृति में देखा था जघन्य मूल प्रकृतियों में, एक समय दे, और यहाँ ऐसा क्यों, यहाँ कौन कौन से लिए देखो। अभी जो हम नाम की देखते हैं, कौन कौन से देखो, ये प्राज्ञान पूर्वी लिए, पांच सहनन लिए, हाँ, और फिर तीर्य गति वगैरह लिए, आतप उद्योग लिए, हाँ, जो कोई है। तो ऐसा क्यों, ऐसा हाँ भले ना लिया, पर ऐसा क्यों लिया, एक इंद्रिय की अपेक्षा अलग क्यों निकल। देखो जब हम एक समय की देखते हैं स्थिति उदीर्णा कहाँ पर होती है, वो नाम और गोत्र की कहाँ पर है, तेरहवे के अंत समय में, सेवक केवल के अंत समय में स्थिति उदीर्णा अंतर्मुर्ग में सेवक एक आवली और एक समय कम कर, तो वहाँ उसका उदय है तो उसकी उदीर्णा बताई। अब वहाँ तो मूल प्रकृतियों की अपेक्षा कोई ना कोई है, वहाँ नाम कर्म की कौन सी प्रकृति है वहां पर, जो तेरहवे में और चौदहवे में उदय रूप है, मनुष्य गति है, गत्ते में पूर्वी करने के लिए बोलो बोलो देवेंद्र भाई हंस रहे बोलो
कौन बोलो मनुष्य गति सॉरी सॉरी आपने बोला मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाता अरे मनुष्य गति पंचेंद्रिय
बराबर है देखो वैसे तो तेरहवे में भी उदय रूप है ना और चौदहवे में भी उदय रूप है तो तेरहवे में उदय की विच्छित्ति हमने देखी थी बहुत सारी देखी थी एक वेदनीय को छोड़कर बाकी तो 28 हो जाएगी 29 और 29 30 ऐसे देखी थी ना वहां पर और चौदहवे में भी नाम कर्म की देखने तो 9 होती है एक आयु है एक उच्च गोत्र है एक वेदनीय है और 9 नाम कर्म की है चौदहवे में उदय रूप परंतु तेरहवे में उदय की उदीर्णा की विच्छित्ति होती है वहां तो तेरहवे में जो उदय रूप है उसको भी हम बात करेंगे ना वहां पर उसकी उदय उदीर्णा थी और वो रुक गई
हाँ,
वो तो आपने चौदहवे की बताई और तेरहवे की बताओ अभी तेरहवे की लंबी लिस्ट है ना एक वेदनीय लिया वहां वज्र ऋषभ नारा सहनन है निर्माण है वहां दिया है इधर इधर चाहिए वहां सब कुछ है देखो अभी हम देखेंगे आगे तो यहाँ इन उत्तर प्रकृतियों की ये बात इसलिए बताई कि जहां उदय है और वहां भी कितना मिनिमम पॉसिबल वहां स्थिति चाहिए तो एकेंद्रियों में मिनिमम पॉसिबल एकेंद्रियों में भी बादर की और सूक्ष्म की स्थिति देखेंगे तो जिस जहां जगन्य जगन्य स्थिति होती है वो कितनी है उसमें से देखना वहां कभी एक समय प्लस आवली वाली कभी एक स्थिति वाली बनेगी ही नहीं क्योंकि यहां जो हम एक स्थिति एक समय वाली बताते हैं उदीर्णा एक स्थिति वाली उदीर्णा जगन्य तो जहां क्षय हो जाता है पूरा और उदय मिट जाता है वहां की अपेक्षा से उसको एक स्थिति घटित होती है ऐसी एक स्थिति वाली जो है ज्ञानावरण में कभी होगी बारहवें के अंत में एक अवली प्लस एक समय वाली जब स्थिति है तभी समझ में है ना तो यहाँ उत्तर प्रकृतियां यहाँ देखो हमने तो ये ऐसी ऐसी बातें देखी है यहाँ फिर देखो जगन्य अध्याचित प्रकृति है वहां देखेंगे दोबारा फिर इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में वहां क्या लिखा है पांच ज्ञानावरण छह दर्शनावरण अब ये छह दर्शनावरण कौन से लेने हैं हाँ स्थान कृति आदि तीन छोड़ के मिथ्यात्व सम्यक्व तीन वे चार वगैरह वगैरह जो है जगन्य स्थिति उदीर्णा एक स्थिति मात्र है एक स्थिति मात्र क्योंकि ऐसा संभव है कि उनकी अभी आवली ही रहेगी उदय में और आवली प्लस एक समय जो है उसमें एक स्थिति में से वहां उसकी उदीर्णा होती है इसलिए एक स्थिति मात्र वहां घटित होती है परंतु अभी जब आगे आगे वाली जो हम उत्तर प्रकृतियां देख रहे हैं कौन सी देखो स्थान वृद्धि आदि तीन तो जहां उसका उदय है वहां मिनिमम पॉसिबल कितनी स्थिति पड़ी है अंदर उसकी अपेक्षा से बताया है कि ये तीन सप्तमांश चार सप्तमांश दो सप्तमांश वगैरह वगैरह उसमें भी पल्ले का असंख्या तो भागहीन क्यों किया क्योंकि बादर में और सूक्ष्म में इस स्थिति में जो वेरिएशन है उसके लिए मिनिमम स्थिति कितनी होती है उसकी बात यहां बताएंगे अब हम आगे बढ़ेंगे अंतिम लाइन मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति औदारिक तेजस्व कारमान शरीर इनका उदय कब मिटता है औदारिक तेजस कारमान शरीर का उदय तो उसको तेरहवे के अंत में मिटता है छह संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र शब्द सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श देखो ये ऐसी प्रकृतियां ली है कि वो तेरहवे में उदय रूप है उसमें से कितने ही की तो उदय की विच्छित्ति तेरहवे में हो जाएगी और कुछ का उदय चलता रहेगा उदय की बात करें परंतु तेरहवे और चौदहवे में जो उदय रूप है वो तेरहवे में भी उदय रूप है ना तो तेरहवे में जो उदय रूप प्रकृति है उसकी लिस्ट अभी बता रहे वर्ण गंध रस स्पर्श अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास दो विहाय गतिया त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर दुस्वर आदेय यश कीर्ति निर्माण तीर्थंकर उच्च गोत्र इनकी जघन्य स्थिति उदीर्णा अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण है, यानी अंतर्मुहूर्त स्थितियों की उदीर्णा होती है उदयावली के ऊपर की। इनकी कितनी स्थितियों में वो कितने स्थितियों में से उदीर्णा होती है अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थितियों में से उदीर्णा होती है, क्योंकि वो उदीर्णा उदय में आने को उदीर्णा कहेंगे। तो तेरहवे का अंत समय की जो उदय रूप है उसके एक समय ऊपर की उदीर्णा होगी, बाद में उदीर्णा तो रुक जाएगी या अंतिम समय तक उदीर्णा होगी। उदीर्णा अंतिम समय तक होगी, परंतु वो होकर कहां चली जाएगी नीचे के नीचे को। तो जब उदीर्णा हो रही है तब निषेकों की कितने निषेक पड़े अंदर सप्ताह में अंतर्मुहूर्त जो चौदहवें में उदय रूप होने वाले, इसमें से कितने ही प्रकृतियां चौदहवें में उदय रूप नहीं है, तेरहवें में ही उदय रूप है। वह कहां पर होती है? वह संयोग केवली के अंतिम समय में होती है, क्योंकि क्या है यहाँ उदय मिट जाता है परंतु क्षय नहीं होता। जब ज्ञानावरण की कहाँ होती है तो क्षीण कषाय के आवली काल पहले और उसके ऊपर का जो है उसको लिया। अब इनकी कहाँ पर होती है? सैव केवली के अंतिम समय में उदीर्णा होती है। कहाँ पर होती है? सैव केवली के अंतिम समय में होती है। वैक्रियक शरीर आदि छह प्रकृतियों की जघन्य स्थिति उदीर्णा पल्लवों के असंख्यात भाग से ही एक हजार सागरोपमों के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है। असंख्य पंचेंद्रिय के वैक्रियक शरीर आदि छह प्रकृतियां मेरे ख्याल से वैक्रियक शरीर एक शरीर रंगोपांग देवगति देवगत्यानुपुरी नरक नरक कत्यानुपुरी होगी
अपेक्षा
उद्वेलना हो जाती है उसके बाद में ऐसा लगता है। आपने क्या कहा असंगी की जगन्य स्थिति उदीर्ण उद्वेलना की अपेक्षा से ही लेना है इसको। क्योंकि एक सागर एक हजार अच्छा एक हजार इसलिए बताया क्या आपने? एक हजार सागरों को में इसीलिए असंगी लिया उन्होंने। वैक्रेक शरीर आदि छह प्रकृतियों की जघन्य स्थिति उदीर्णा पल्लवों के असंख्यात भाग से हीन एक हजार सागरोपमों के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है। एक हजार सागरोपम लिया ये असंगी की स्थिति होती है इसलिए उन्होंने लिया है। विशेष इतना है कि वैक्रेक शरीर की जघन्य स्थिति उदीर्णा एक सागरोपम के सात भागों में से कुछ कम दो भाग प्रमाण है। वैक्रियक शरीर की जघन्य स्थिति उदीर्ण एक सागरोपम के सात भागों में से कुछ कम दो भाग प्रमाण है। वायु का एक है क्योंकि वो जो वायु का एक जो विक्रिया करते हैं तो जिसके सत्ता में वैक्रियक शरीर है वही उसको विक्रिया कर सकता है। तो ऊपर जो लिया था 1000 वाला वो असंगी का लिया था और यहाँ जो लिया है वो वायु का एक का लिया है। अब उद्वेलना की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति उदीर्णा पल्लोपम के असंख्यात भाग से हीन एक सागरोपम प्रमाण है, परंतु वह जघन्य स्थिति उदीर्णा उद्वेलना को करने वाले जीव के सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान के योग्य जघन्य स्थिति सत्व को करके सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उसके अंतिम समय में होती है। क्या करना चाहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति उदीर्णा कब होती है? तो सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा कब होगी? जब उसका उदय होगा तब, तीसरे गुणस्थान। तो ऐसा जीव चाहिए कि जब उसकी मिनिमम पॉसिबल उसकी सत्ता पड़ी है, स्थिति सत्ता में पड़ा है। इसलिए क्या लिखा है देखो, उद्वेलना की अपेक्षा की। तो उद्वेलना की अपेक्षा कितनी होती है जघन्य स्थिति उदीर्णा पल्लोकम के असंख्यात भाग से हीन एक सागरोपम, एक सागर में से पल्लो का असंख्यात भाग हीन इतनी होती है। परंतु वह जघन्य स्थिति उदीर्णा उद्वेलना को करने वाले जीव के सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान के योग्य जघन्य स्थिति सत्व को करके सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उसके अंतिम समय में होती है। कब होती है? तो अंतिम समय में होती है, क्योंकि वो सम्यक मिथ्यात्व के अंतर्मूर्त काल तक तो उसके उदय होकर निर्जरा हुई ना। अभी हमको कम से कम कितनी स्थितियों की निर्जरा है, उदीर्णा होती है, उसकी बात चल रही है। देखो देखो, तीसरे गुणस्थान में उद्वेलना नहीं होती, उद्वेलना तो मिथ्यात्व में होती है। जीव मिथ्यात्व में गया है और उद्वेलना होते 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 स्थिति एकदम कम हो गई। कितनी? सागर में से भी पल्ले का असंख्या का भाग कम, इतनी स्थिति हो गई। फिर भी उस समय वो तीसरे में आया है। तीसरे में आने योग्य जितनी पॉसिबल स्थिति करनी थी उतनी करने पर वो तीसरे में आ गया है। अब तीसरे में आया तो सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति कितनी पड़ी है अंदर? सागर में वो पल्ले का असंख्या का भाग कम। अब उसमें से भी वो उदीर्णा करते करते तीसरे गुणस्थान का अंतिम समय आ गया। अभी जितने बच्चे हैं सप्ताह में, जितने निषेक उसके पड़े हैं उसमें से उदीर्णा हो रही है ना उसकी अंतिम समय में, वो वाला समय लिया। बाद में तो उद्वेलना करेगा वो और फिर वो सारा मिथ्यात्व रूप से परिणमित होगा। देखो, उद्वेलना करने वाला जो मिथ्यात्व अवस्था में उद्वेलना करता है, उद्वेलना करता है, उद्वेलना के मरण का कुछ प्रश्न नहीं है, क्योंकि अनेक भवन तक उसकी स्थिति में पड़ा है ना। तीन प्रकृति हो गई उसकी, अभी तीन प्रकृति हो गई ना सम्यक, तो जब उसने वो किया था तब तीन प्रकृति तैयार हुई थी, तीन प्रकृति तैयार हुई थी। बहुत काल बीत गया उसका, मिथ्यात्व में चला गया है वो। ये बीच बीच में वो सम्यक दर्शन भी करता, जो कुछ हुआ अभी मिथ्यात्व में बहुत काल तक पड़ा है। तो हम कहते हैं जो वेदक योग्य काल, वेदक योग्य काल में उसको सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता थी, तो वो बीत गया। अब क्या होगा उसका? फिर उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है। केंद्रीय में या मिथ्यात्व अवस्था में बहुत काल बीता है उसने, तो उसकी उद्वेलना होती है, उल्टा उसका उल्टा संक्रमण होता है, मिथ्यात्व रूप से हो जाता है। यानी अभी उसकी स्थिति बहुत कम रहेगी, इसलिए यहाँ जघन्य उदीर्णा की बात की।
वेदक काल पूरा होने से
बाद में, वेदक के बाद उपशम योग्य काल जिसको कहते हैं, उपशम योग्य है परंतु वो अभी एकेंद्रिय में पड़ा है या सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में गया, उसने किया नहीं है सम्यक को प्राप्त, तो मिथ्यात्व
अवस्था
वही तो बता रहे, क्योंकि अभी उसकी सत्ता में उसके कम से कम निषेक पड़े हैं, इसलिए उसको जघन्य उदीर्णा वाला जीव का। क्योंकि पहले समय में तो उसके भी जो तीसरे गुणस्थान का काल है उतने तो वहां निषेक ज्यादा पड़े हैं ना, तीसरे गुणस्थान के काल में उतने निषेक और निकल गए, इसलिए अंतिम समय लिया। आहार द्विक की जघन्य स्थिति उदीर्णा अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। इस प्रकार जघन्य स्थिति अध्याचित समाप्त हो गया। यहां स्वामित्व, इस स्वामित्व की अपेक्षा ये फिर दोबारा सब घटित करेंगे। पांच ज्ञानावरण प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर जिसने आवली मात्र काल को बिताया है ऐसा एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त जीव उसका उदीरक होता है। होता है यदि अपर्याप्त है तो वह आवली कालवर्ती तद्भवस्थ होने तक उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। शंका, अपर्याप्त कहने पर किसका ग्रहण किया गया है? समाधान, नारक बादर प्रत्येक शरीर एकेंद्रिय और गर्भोपक्रांतिक नपुसक का ग्रहण करना चाहिए। हाँ, इन्हें वो अपर्याप्त नाम कर्म वाला नहीं लिया है, परंतु जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक कब है? उसकी बात ही नहीं है, वेद की बात नहीं लिया है, ज्ञानावरण की बात, ज्ञानावरण की बात ली है ना। अच्छा, गर्भोपक्रांतिक नपुंसक लिया क्या? जिस प्रकार ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के स्वामित्व की प्ररूपना की गई है उसी प्रकार चार दर्शनावरणीय असातावेदनीय मिथ्यात्व सोलह कषाय अरति शोक भय जुगुप्सा नपुसक वेद तेजस्व कारमान शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु निर्माण कुंडक संस्थान नीच गोत्र और पांच अंतराय प्रकृतियों के भी स्वामित्व की प्ररूपना करनी चाहिए। ये उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की बात की है। सातावेदिनी की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? ये हमने पढ़ा है दो तीन बार, फिर भी पढ़ेंगे। जो असातावेदिनी की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न होकर सातावेदिनी की बांधता हुआ एक आवली से ही असाता की उत्कृष्ट स्थिति को सातारूप संक्रांत कर व संक्रमणावली काल को बिताकर उदयावली के बाहर की सब स्थितियों का अपकर्षण करके उदय में देता है वह सातावेदिनी की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। इसी प्रकार हास्य रति पुरुष और स्त्री वेद के स्वामित्व की प्ररूपना करना चाहिए। स्त्यान वृद्धि आदि तीन निद्रा और प्रचला की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? ये स्त्यान वृद्धि आदि तीन निद्रा और प्रचला, क्योंकि ऊपर तो सभी स्त्यान वृद्धि आदि तीन में वो निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला आ गए, यानी पांचों ही निद्रा ली यहाँ पर। ऊपर तो चार लिए थे दर्शनावरण, अब हाँ अब यहाँ बाकी ये निद्रा ली पांच। जो उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न होता हुआ उक्त पांच प्रकृतियों में से किसी एक का उदीरक होकर बंधावली से अतिक्रांत उदयावली के बाहर की सब स्थितियों का अपकर्षण कर उदय में दे रहा है वह उनकी उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। ऐसी बात नहीं है, उदीरणा तो हर समय चल रही है, ज्यादा कम की बात नहीं है उसके, ज्यादा कम तो उसके अनुभाग की अपेक्षा या उसकी बात कर। स्त्यान वृद्धि आदि तीन की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक नियम से पर्याप्त जीव होता है, अपर्याप्त अवस्था में उसका उदय नहीं है इसलिए पर्याप्त जीव का। सम्यक्त प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर अंतर्मूर्त में प्रतिभग्न होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, उसके सम्यक दृष्टि होने के द्वितीय समय में सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा होती है। वही सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गया तब उसके सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। चार आयु कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु स्थिति में उत्पन्न होकर प्रथम समयवर्ती तदवस्थ है वह उस आयु की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। इसका अर्थ समझ में है? अपने अपनी उत्कृष्ट आयु स्थिति में उत्पन्न हुआ, मनुष्य की बात क्यों करते हैं? मनुष्य की उत्कृष्ट आयु स्थिति कितनी है? तीन पल्ले। तो जो तीन पल्ले की आयु से उत्पन्न हुआ है वो पहला समय, प्रथम समय तद्भवस्थ है, वह उस आयु की, अभी हमने मनुष्य की बात की, वो मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक है। तिर्यंच में भी तीन पल्ले, नरक और देव में 33 साल है, इसलिए अपनी अपनी आयु कहें। नरक गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर नरक गति में उत्पन्न हुआ है वह जगन्य से पांचवी और उत्कर्ष से सातवीं पृथ्वी में तद्भवस्थ होने के प्रथम समय में, द्वितीय समय में, तृतीय समय में, चतुर्थ समय में, इस प्रकार तद्भवस्थ होने के आवली मात्र काल तक नरक गति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। देखो ये कुछ नरक गति, ये आयु जैसे फिक्स होती है वो गति नाम कर्म है, नाम कर्म का भेद है ना। उत्कृष्ट की बात, जगन्य से पांचवी उत्कर्ष से सातवी लिया, तद्भवस्थ होने के प्रथम समय में ऐसे आवली मात्र काल तक नरक गति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक है। नरक गति की स्थिति तो कितनी बांधी होगी उसमें, तो उसकी उदीर्णा होकर अभी उदय में आ रही ना, उसकी आयु आयु के समान इसको नहीं लेना, यानी सातवें नरक की आयु कितनी है, पांचवे की कितनी, उसके बाद यहाँ नहीं लेना है। नाम कर्म है ना, उसकी स्थिति ज्यादा बांधी है। ना उसके बाद क्यों की पांचवी की वो पता नहीं चला, जगन्य से पांचवी उत्कर्ष से सातवीं पृथ्वी में उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कितना होता है, यानी पांचवी से सातवीं पृथ्वी तक के लिए जी। तिर्य गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? ये नरक गति नाम कर्म का उत्कृष्ट उदीरक कौन है उसको लिया। अभी तिर्य गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? नियम से देव गति से लौट कर आया हुआ एकेंद्रिय पर्याप्त अथवा देव गति व नरक गति से लौट कर आया हुआ गर्भोपक्रांतिक तिर्यंच योनि वाला नपुंसक वेदी जीव तिर्य गति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। अभी इसमें तो हमें कौन होता है ये तो समझना है, उसमें अपने बुद्धि तो नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एकेंद्रिय जाति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा के स्वामी का कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि देव पर्याय से पीछे आए हुए एकेंद्रिय जीव के ही उसकी उदीरणा संभव है। पंचेंद्रिय जाति की उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा के स्वामी का कथन ज्ञानावरण के समान है। विशेष इतना है कि यहाँ एकेंद्रिय नहीं कहना चाहिए, मनुष्य गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो मनुष्य नरक गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर उससे भ्रष्ट होता हुआ मनुष्य गति को बांधता है उसके नरक गति की उत्कृष्ट स्थिति का मनुष्य गति रूप से संक्रमण होने पर एक आवली काल के पश्चात मनुष्य गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। मैंने पहले नरक गति बांध दी थी, बाद में मनुष्य गति बांधने और मनुष्य गति रूप से उदय में आया। देवगति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो मनुष्य या तिरंज होता है वह नरक गति की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर भ्रष्ट होता हुआ उसी समय में देवगति को बांधकर अंतर्मूर्त में देव हो जाता है। उसके देव होने के प्रथम समय में देवगति की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा होती है, यानी वो नरक गति है वो देवगति रूप से संक्रमित हो जाती है, तो उसको देवगति की उदीर्णा कहेंगे। जिस प्रकार तिर्य गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा के स्वामी की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार औदारिक शरीर की भी प्ररूपना करनी चाहिए। वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की प्ररूपना नरक गति के समान है। आहारक शरीर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? आहारक शरीर का उदीरक तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति के सत्व वाला समयवर्ती आहारक शरीर ही होता है। कौन सा समयवर्ती?
आहारक शरीर बनने का जो प्रथम समय
है, प्रथम कहाँ लिखा है? आहार शरीर से तब पाओ उपस्य ठीति संत कमियो पढ़म समय आहार शरीर हो, ये प्रथम समय करना वहां पर। प्रथम समयवर्ती करना, प्रथम समयवर्ती आहारक शरीर ही होता है।
प्रथम समय आहारक शरीर का उदीरक,
हाँ देखो देखो, आहारक शरीर का उदीरक तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति के सत्व वाला, यहाँ लिखना प्रथम।
जो लास्ट टाइम में पढ़म समय वही है ना?
हाँ,
ऊपर के अंदर
सत्व वाला के बाद प्रथम शब्द डालना।
तो आरक शरीर जिसका प्राप्त किया,
जिसका उदय चालू हो गया, उदय चालू होने के पहले समय में उसका उत्कृष्ट उदीर्णा होगी, अंतिम समय में जगन्य उदीर्णा होगी, क्योंकि उदय है तब तक उसका उदीर्णा होगी ना। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? उसका उदीरक देव अथवा नारक जी होता है, जो उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर तिर्यंच योनि वाले गर्भोपक्रांतिक नपुसक में उत्पन्न हुआ है, उसके उक्त भव में स्थित होने के आवली मात्र काल के भीतर औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। जिस प्रकार वैक्रियक और आहारक शरीर संबंधी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार से उनके अंगोपांग नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की प्ररूपणा करना चाहिए। जैसे पांच शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की प्ररूपणा की गई है, वैसे ही पांच बंधन और पांच संघात नाम कर्मों के संबंध में भी प्ररूपणा करना चाहिए। बाकी बात कल करेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।